ओम शांति। अच्छी बात है। तो ज्ञान सरोवर में एकत्रित स्थान स्थान के प्यारे बाबा के प्यारे बच्चों को आज भी प्यारे ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं, क्योंकि प्यारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता हैं और वो कहीं भी इसी स्थान पर भी एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो जैसे कोई जनरल होते हैं आर्मी के, तो उनका ध्यान जहां जहां कुछ एक्टिविटी हो रही होती है वहां जाता है, तो प्यारे बाबा के प्यारे मधुबन में खास तौर पे जहां जहां भी कोई भट्टी होती है, कोई क्लास हो रहा होता है, कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, तो ब्रह्मा बाबा वहां अवश्य ही मौजूद रहते हैं। तो जैसे बाप दादा के दिन हम सभी ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, इसी प्रकार से अपने सूक्ष्म तीसरी आंख के द्वारा हम जब तक हम ये बैठे आपस में ये बाबा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो बाबा की उपस्थिति का आवाहन करेंगे तो हमें बहुत ही खुशी अनुभव होगा और नशा चढ़ेगा। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने देखो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके कितनी बड़ी बगिया रची। हम सब अगर पिछली हिस्ट्री को देखते हैं, तो जब हम मधुबन में आते थे, पहले शुरू में आते थे, 1954 में आते थे, तो उस समय बाबा के मधुबन बगीचे का, बगीचा कहो बीच कहो, का रूप दूसरा था। वहां से शुरू करते करते प्यारे बाबा ने पांडव भवन बनाया। पांडव भवन भी छोटा पड़ गया तो ओम शांति भवन बनाया, और उसके बाद ज्ञान सरोवर बनाया। मुझे याद है जब ये ज्ञान सरोवर कैंपस बना था, तो सबसे पूछा गया था इसका नाम क्या रखा जाए। तो मुझे याद है कि मनोहर दादी जी, जो बाबा के आदि रत्नों में हैं, उन्होंने ये नाम बताया था। और कितना सुंदर नाम इस ज्ञान सरोवर का है। हर प्रकार के सरोवर दुनिया में होते हैं, लेकिन ज्ञान का सरोवर जिसमें ज्ञान स्नान करके आत्माएं जो हैं, हम जानते हैं कि हंस बन के उड़ती हैं, उस स्थान पर आप बैठे हैं। और स्थान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आप देखते हैं स्थान का इतना महत्व होता है, क्योंकि उस स्थान की धरती में तपस्या जहां होती रहे, जहां ज्ञान का लेन देन होता रहे, और जहां पर इंटरनेशनल कार्यक्रम होते रहे, और हर साल विदेश के भाई बहन जहां आकर निवास करते रहे, तो वो स्थान ही कितना पावन और कितना प्रेरणादायक होता है। इस ज्ञान सरोवर में आज हम अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा की स्मृति में बैठ करके कुछ बाबा की, बाबा तो सागर हैं हर चीज के, उनकी विशेषताओं से तो बहुत अति विशेषता इतनी है कि गिनने से ही एक किताब बन जाए, तो उनकी विशेषताओं में से कुछ का आपस में हम मनन चिंतन करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ को अडॉप्ट किया, उस घड़ी से लेकर अंतिम घड़ी तक बाबा संपूर्ण समर्पित रहे। एक होता है अर्पण, एक होता है समर्पण और एक होता है संपूर्ण समर्पण। तो ब्रह्मा बाबा फर्स्ट डे से, पहली घड़ी से ही पूरी तरह से समर्पित हो गए। हमें आज देखना है कि हम भी क्या उसी प्रकार से ब्रह्मा बाबा की तरह से, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा का स्मृति मास चल रहा है, उसी प्रकार से संपूर्ण समर्पित हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे कि संपूर्ण समर्पित की निशानी क्या होती है, अर्थात जो वस्तु, जो चीज हम अपनी कहते थे, वो परमात्मा के हवाले कर दिया, फिर उसमें मेरा अपनापन किसी भी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। तो पहला कदम बाबा ने क्या उठाया, जिसको कहा गया है संपूर्ण त्याग, सर्वस्व त्याग, त्याग का भी त्याग। तो ब्रह्मा बाबा हम जानते हैं कि संसारिक तौर पे बहुत ही प्रतिष्ठित और माननीय सम्माननीय व्यक्ति थे, अपने समाज में आपका ऊंचा दर्जा था, किसी की मजाल नहीं थी कि ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ कहे, क्योंकि उनका संसारिक जीवन भी भक्ति मार्ग का था, दान पुण्य करने का था, तीर्थों पर जाने का था, तो जिस बहुत शुद्ध थी। तो ब्रह्मा बाबा जब समर्पित हुए बाबा के, तो देखिए त्याग किया पुरानी दुनिया का, पुराने संबंध संपर्क का, पुराने रिश्तों का संपूर्ण त्याग कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा बाबा को क्या कुछ नहीं कहा गया, उनकी बिरादरी वालों ने, अन्य लोगों ने, समाज ने, सब ने ब्रह्मा बाबा के बारे में, जिसको कहते हैं बाबा ने बहुत गालियां खाई, ऐसा व्यक्ति जो सम्माननीय था कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के अर्पित होने के बाद किसी भी बात की परवाह नहीं की, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लोग कहते थे, कोर्ट तक भी केस गए कि बाबा आप केवल ये पवित्रता की धारणा की जो बात है, इसको थोड़ा ढीला कर दो। क्या बाबा ने ढीला किया? नहीं। तो जो शिव बाबा के बताए हुए श्रीमत थी, उसका पूरा पूरा पालन किया और उसके महत्व को जानते हुए, जबकि सारा समाज एक प्रकार से अपोजिशन कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल अपने नियमों का पालन किया। और जैसे कहा जाता है कि सत्य की नाव ढोलती है लेकिन आखिर पार हो जाती है, तो ब्रह्मा बाबा ने जो उस समय बीज बोया, उसका आज का स्वरूप हम सब भाई बहन देख रहे हैं। अब हमें इससे क्या धारण करना है, क्योंकि हमारा वैसे तो हर दिवस स्मृति दिवस है, संगम युग की हर घड़ी हमारी स्मरण करने की घड़ी है, और बाबा ने बताया हुआ है कि स्मृति से समृद्धि आती है। आपके अंदर कुछ भी मर्ज रूप में है, उससे आपको जब तक आप उसका इमर्ज नहीं करेंगे, तो उस प्राप्तियों का, चाहे कितनी भी प्राप्तियां हों, उनका आपको नशा नहीं चढ़ेगा। और उनके प्राप्तियों की धारणा की जो झलक और फलक है, वो हमारे चेहरे पर नहीं आएगी, और हमारे जीवन में भी वो प्राप्तियां जो हैं वो दिखाई नहीं देंगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ अलौकिकता, क्योंकि हमारा जन्म, चाहे वो ब्रह्मा बाबा के रथ को अडॉप्ट होना है या ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब ब्राह्मणों का जन्म होना है, उसका अगर एक शब्द में वर्णन करें तो वह है अलौकिक। वो लौकिक से अलौकिक बन गए, ब्रह्मा बाबा बन गए। मैंने उनको स्वयं बॉम्बे में हॉस्पिटल में, बाबा थे कुछ शारीरिक व्याधि के कारण से, तो मैंने स्वयं उनके दूर दूर के पुराने लौकिक रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में उनको मिलने आते हुए देखा। तो ब्रह्मा बाबा उनसे लौकिकता का जिक्र भी नहीं करते थे, उनकी लौकिकता को सोचते भी नहीं थे, और उनको आते ही ज्ञान देना शुरू कर देते थे, ताकि उस व्यक्ति के मन में कोई उनका लौकिक नाम भी उनके मुख से नहीं निकलता था, कोई लौकिक रिश्ता और संबंध भी मुंह से नहीं निकलता था। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने एक घड़ी भी विस्मृति नहीं लाई। तो जब ये स्मृति का मास चल रहा है और हम बाबा के फुटस्टेप्स को याद कर रहे हैं, तो हम पहली बात तो ये नोट करें कि ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व त्याग किया और किसी भी प्रकार का अंश भी लौकिकता का अपने अंदर नहीं रखा। और उस त्याग में बाबा ने हमें भी सिखाया है कि मेरे बच्चों, ये त्याग नहीं है, ये तो बहुत बड़े भाग्य की प्राप्ति है। इसलिए स्लोगन प्रसिद्ध हो गया कि त्याग से भाग्य बनता है। अब बाबा ने सबसे पहले किस चीज का त्याग किया, जिसको हम कहते हैं देहभान। क्योंकि जब आप देहभान में रहेंगे, जब आप अपने आप को शरीर मानेंगे, तो आप लौकिक हो गए। और फिर ये हो नहीं सकता कि मैं अपने आप को शरीर मानूं और मैं अलौकिक में रहूं, क्योंकि शरीर के साथ, शरीर के संबंध, शरीर के जो जितनी भी चीजें हैं, आकर्षण हैं, वो सब शरीर के साथ रहते ही रहते हैं। और दूसरे भी आपको तरह ही सिखाया कि जब तुम अलौकिक हो गए, तो पहली बात आपका स्वयं जो मैं है वो भी अलौकिक हो गया, फिर आपका परिवार भी अलौकिक हो गया, और फिर आपका परम पिता भी अलौकिक और परलौकिक हो गया। अब जरा सी चेंज से कितना फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते हैं, अब बच्चों आपको अपने अविनाशी घर में जाना है, जो परम धाम है। फिर भी हम देखते हैं हमारे कई ब्राह्मण भाई बहन क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे लौकिक घर गए 2 साल हो गए, अब मुझे लौकिक घर जाना है। उनको कभी कोई खास काम है क्या है, क्योंकि बाबा कहते हैं तोड़ निभाओ, तो कहते हैं नहीं, ये भी तो 1 साल के बाद लौकिक घर गया था, मुझे भी जाना है। अब मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि बाबा के बच्चे जीवन समर्पित, और फिर उनको लौकिक घर याद आ रहा है। लौकिक घर बाबा ने आदि रत्नों को भी भेजा था, लेकिन किस लिए भेजा था, कि अपने लौकिक घर को भी अलौकिक बनाए। अपनी जो जितनी उन्होंने उस वक्त तक धारणा की थी, तपस्या की थी, उसका प्रभाव अपने लौकिक पर डालें। और थोड़े से बच्चे थे जो लौकिक पर प्रभाव डालने की बजाय लौकिक के प्रभाव में आ गए। क्योंकि बाबा जब टेस्ट देता है हमको ड्रामा अनुसार, तो उस टेस्ट में फेल पास दोनों की संभावना होती है। तो ऐसे भी थे जो ये सोचने लगे कि अब यज्ञ तो बहुत गरीब हो गया है, यज्ञ चले ना चले, लौकिक वाले मुझे रिसीव करने को तैयार हैं। वो माया भी जो होती है, जो बाबा के रास्ते से हटता है, उसको बहुत प्रलोभन देती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने आप देखेंगे, चाहे उनका लौकिक बेटा था, उसकी सब हिस्ट्री जानते हैं, बाबा ने कभी भी लौकिक को प्रेफरेंस नहीं दी। उनकी लौकिक बच्ची दादी निर्मल शांता, जिनको हम परदादी कहते थे, बाबा ने उनको संस्था की अपने बाद हेड नहीं बनाया। मुझे याद है कि जब हम मधुबन में आते थे, तो दोपहर के वक्त भोजन के बाद बाबा हमें बुलाते थे, आओ बच्चे, थोड़ा बच्चे को अपने कंपनी देने के लिए बाबा ताश खिलाते थे, प्लेइंग कार्ड्स। तो पहले पहले जब मुझे बुलाया, तो मैं उस वक्त फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन में काम करता था, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें ताश खेलना आता है? मैंने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो। फिर बोले तुम क्लब में नहीं जाते? यद्यपि हमारी उस कंपनी में बहुत बड़ा क्लब था, ऑफिसर्स क्लब था, तो मैं उसमें नहीं जाता था, मुझे वहां जाके क्या करना है। तो मैंने कहा बाबा मैं तो वहां नहीं जाता हूं, साल में एक बार अपने ऑडिट के काम से स्टॉक गिनने जाता हूं। फिर बाबा ने मुझे वो जो ताश खेलते फिर सिखाया, बहुत इजी सा ताश था। तो हम बाबा के पास भोजन के बाद बहुत इच्छा रखते थे कि बाबा बुलाए और हम ताश खेले। उस वक्त मैं देखता था बाबा का लौकिक बच्चा नारायण वो भी आया हुआ होता था, लेकिन बाबा मुझे अपने साथ अपनी गद्दी पर बैठाते थे और नारायण को सामने बैठाते। अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी होती थी कि देखो, हम बहुत छोटे थे उस समय, कि देखो बाबा ने मुझे अपने साथ बैठाया है और अपने लौकिक बच्चे को दूर बैठाया। तो इस प्रकार से हमें फीलिंग आती थी कि बाबा लौकिकता की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। इसी प्रकार चाहे लौकिक वस्त्र हो, मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों में कोयले की ट्रेन चला करती थी और उसकी खिड़कियां भी खुली होती थी और वो ट्रेन बड़ा स्लो होता था। हम अपने नगर पंजाब से जब तक माउंट आबू आते थे तो हमारी सारी ड्रेस कोयले के उससे काली हुई होती थी। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं मधुबन में आया, दोपहर के 2 बजे होंगे, तो मुझे कमरा दिया गया जिसको एरोप्लेन कहते हैं, ऊपर जाके गुंबज में। तो मैं बिल्कुल लौकिक काली ड्रेस में थका थकाया मुश्किल से सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने कमरे में एंटर हुआ और खाट पर बिना होल डाल खोले ही, उन दिनों हम अपने घर से बिस्तर लाया करते थे, खाट पर जूते पहने सहित लेट गया। और मेरे मन में ये था कि सब भोजन करके जा चुके हैं किचन से, 2 घंटे रेस्ट करके 4 बजे मैं नीचे चाय पीने जाऊंगा। उसी काली ड्रेस में लेटा हुआ था तो अचानक मुझे लकड़ी के खड़ाओं से सीढ़ी चढ़ने की आवाज आई। तो मैंने समझ लिया कि बाबा आ रहे हैं और बाबा के साथ हमेशा कुछ बच्चे भी रहते थे। तो मुझे अपने काली ड्रेस देखकर, लौकिक ड्रेस कर बहुत ख्याल आया, मैं नया नया था। तो मैंने कहा बाबा क्या देखेगा, इसका बिस्तरा बंधा हुआ है और इस तरह। तो मैंने और कुछ नहीं किया, आकर के अपने रूम का बाहर से कुंडा लगा दिया और बाहर खड़ा हो गया। तो बाबा आए अपने बाकी बच्चों के साथ कुछ ज्ञान ध्यान करते और सीधा पानी की टैंकी थी वहां, उसको इंस्पेक्ट करने गए। तो बाबा ने टैंकी को खुलवाया और बच्चों को ज्ञान देना शुरू किया कि देखो, जैसे इस टैंकी में जंक लग जाता है और उसको घासलेट, बाबा केरोसिन ऑयल को कहते थे, इसको घासलेट से साफ करते हैं, इसी प्रकार आत्मा को भी जंक लग गया है और उसको ज्ञान के घासलेट से साफ करना। बाबा ने मेरी तरफ भी देखा, मुस्कुराया, बच्चे आए हो, दृष्टि दी और नीचे चले गए। तो बाबा ने तो लौकिक ड्रेस वगैरह को देखा ही नहीं, पर मेरे ऊपर बाबा की जो कहते ना श्रेष्ठ आत्माओं के संग से भी व्यक्ति को हल्कापन आ जाता है, उसके बाद मुझे इतना हल्कापन आया कि मैं 2-2 सीढ़ी अच्छी उतर करके किचन में गया, चाय बनाई, उसके बाद मुझे रेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये मेरा बहुत पहले का अनुभव है। तो जो अलौकिक हैं उनका अलौकिक प्रभाव इतना पड़ता है कि कोई भारी भी हो वो लाइट हो जाता है। इस प्रकार के हमारे बाबा थे। तो बाबा ने हमें बताया कि पहले तो आई जो हमारा मैं है उसके मीनिंग को चेंज करो। ये हम सब ब्राह्मणों का फर्स्ट लेसन है कि मैं शरीर नहीं हूं। अब शरीर से लौकिकता आती है। अब मैं शरीर तो नहीं हूं लेकिन हम शरीर के अंदर बंधे हुए हैं और जब तक हमारा अंतिम श्वास है शरीर तो हमारे साथ रहता ही है। अब शरीर में रहते हुए मैं शरीर नहीं हूं, देह बांध से अलग रहना यानी अपने मैं आई के अर्थ को ही चेंज कर देना, ये हमने बाबा से सीखा। बाबा ने बच्चों को, जो आदि काल में बाबा के साथ बच्चे थे, उनको अपने सानिग्ध से, अपनी कंपनी से बहुत सी बातें सिखाई जो कि उनके जीवन का अंग बन गई। और जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब मैं हम बाबा को देखते हैं, हम बाबा तो नहीं हैं, बाबा के एक बहुत छोटे से सेवाधारी बच्चे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ झलक बाबा की जो हमें पालना मिली है उसकी हर बच्चे के अंदर होती है, क्योंकि जिसको ब्रह्मा कुमार कुमारी कह दिया उसको देखेंगे कि दुनिया में भी वो खड़ा हो जाएगा कहीं जाके, तो कुछ न कुछ न्यारापन, कुछ न कुछ अलौकिकता उसकी होगी, तो लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। तो उसकी संपूर्णता को हमें धारण करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने देह भान को छोड़ना और देह अभिमान को छोड़ना, वो जरा और भी गहरी बात है। देह भान तो मैंने कि मैं शरीर में रहते हुए मैं आत्मा हूं, देह अभिमान आत्मा में हो जाता है जिसको अहंकार कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा इतनी ऊंचे से ऊंची हस्ती जिसको कहा जाता है होलीएस्ट ऑफ द होली, और ब्रह्मा बाबा ने कह दिया मैं बच्चों का सेवाधारी हूं, मैं विश्व का सेवाधारी हूं। ब्रह्मा बाबा हमको बताया करते थे कि इंग्लैंड के इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड होते थे गवर्नर, जब भी वो चिट्ठी लिखते थे तो उसके नीचे यूर्स ओबीडियंट सर्वेंट लिखते थे। अब बाबा बताते थे हम सब ऑन गॉडली सर्विस ओनली है, तो हम श्रेष्ठ सेवाधारी हैं। और उसमें बाबा कहते थे सबसे प्रथम सेवाधारी मैं हूं, निर्माणता नम्रता, कभी भी उस देह अभिमान में आना ही नहीं, थ्रू आउट फर्स्ट डे से लास्ट डे तक, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। और बाबा कहते थे ये जो मैं है, बस मैं के अर्थ को हमने परिवर्तित करना है। तो मैं अगर देह भान वाली होती है तो उस मैं से ही सारा कुछ, जितने हमारी प्राप्तियां हैं, जितना हमारा नशा है, जो भी हमारा निश्चय है, उसके नीचे आने में, उसकी परसेंटेज को नीचे आने में ये मैं ही सबसे बड़ा कारण है। तो बाबा कहते थे ये मैं जो है, हमको सिखाया जाता था कि मैं से चार बातें पैदा होती हैं, एक तो मायूसी, दूसरा मगरूरी, तीसरा मुरझाइश और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट मतभेद। तो हम बाबा ने दुनिया में आज कितना मतभेद है, कितने टुकड़े हैं, हम सब जानते हैं, भाषा भेद, धर्म भेद, बहुत भेद ही भेद हैं। लेकिन बाबा ने हमको इस देह भान से हटाकर, हमारे यज्ञ में कोई नहीं कहता मैं मद्रासी हूं, मैं फरानी भाषा बोलता हूं, मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, कुछ नहीं, क्योंकि आत्म रूप से, तो आत्म रूप से बाबा ने हमारे सब चीजों से लौकिकता से छुड़वाया। और बाबा ने हमें कह रखा है कि बच्चे तीन बिंदी का तिलक लगाओ, मैं आत्मा भी बिंदी, ड्रामा में जो कुछ होता है बिंदी बिंदी लगती जाती है, मेरा पिता भी बिंदी। अब ये तीन बिंदी का लेसन कितना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने में जरा सा हम देह भान में आ गए तो क्या होगा, मत भेद पैदा हो जाएगा। अब ज्ञान सरोवर वाले भी अगर अपने इतिहास को देखें तो ज्ञान सरोवर इतना ऊंचा स्थान है, दुनिया के लोग, टूरिस्ट, बाबा के बच्चे और विदेशी ज्ञान सरोवर को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, है भी ऐसा ही, लेकिन जरा सा कभी भी मैं आया देह का तो आप देखेंगे जैसे सीमेंट रेत में बदल जाए तो सारा वातावरण ही बदल जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये मैं को परिवर्तित करो। अब मैं को परिवर्तित कैसे करें, तो बाबा कहते हैं उसका अर्थ चेंज कर दो, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, तो मेरा परिवार भी अलौकिक और रूहानी परिवार हो जाएगा। तो इतना ही चेंज करना है। और उसके लिए बाबा कहते हैं मैंने आपको तीसरी आंख दी हुई, तीसरी आंख, अगर कोई व्यक्ति नेत्रों से नेत्रहीन भी है तो आप देखेंगे उसको कहो बिंदी लगा, उसको कागज दोगे वो भी बिंदी लगा देगा। और हम तो बाबा ने हमको तीसरी आंख दी हुई है, त्रिनेत्री बनाया हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दिया हुआ, फिर भी बाबा कहता है कि द्वापर के जो संस्कार हमारे अंदर हैं, वो जो बीच के पीरियड के संस्कार हैं, जिसको हम कहते हैं अपने मान लिया है, जो हमारी समझिए कि मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में प्रकट हो जाते हैं, उसे देवभान आ जाता है, और देवभान के आते ही लौकिकता में अलौकिकता बदल जाती है। कोई देखने वाला भी कहता है कि ऐसा तो दुनिया में भी होता है, तो बाबा ने नई दुनिया बनाई। ये संगम युग एक विचित्र युग है, ये एक जादू की दुनिया है, और ज्ञान सरोवर भी एक जादू की नगरी है। लेकिन जो ही हमने तीसरी आंख झपकी, हमारी माया ने धूल डाल के टेम्परेरीली, या कहते हैं सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है तो टेम्परेरी लगता है सूर्य है ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन उससे ये हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने हमको ये भी सिखाया। फिर ब्रह्मा बाबा लौकिकता को इतना ध्यान देते थे कि मुझे याद है कि मेरे लौकिक पिता ने, जो भी हमारा परिवार अलौकिक बन चुका था, ब्राह्मण परिवार बन चुका था, तो मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा। मेरे लौकिक पिता ने जब शरीर छोड़ा तो क्या हुआ कि वो भी ऑफिसर थे ऑफिस में, तो उनके 30 ड्रेस थे, जो ऑफिस के ड्रेस होते हैं लौकिक, वो उनके मेजे बिल्कुल फिट आते थे। तो मैंने सोचा कि लोग शरीर छोड़ने पर दान कर देते हैं ब्राह्मणों को उस व्यक्ति की वस्तुएं, मैं तो बाबा का बच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं, क्यों नहीं बस 30 के 30 ड्रेस रख लूं और मैं उनको यूज कर लिया करूंगा, मेरे बिल्कुल फिट आते। तो मैंने अनजाने में ये सोचकर कि भाई इसमें तो हमारा कल्याण है, यज्ञ का पैसा बच जाएगा, मैंने रख लिया। और माउंट आबू जब हम आते थे मधुबन में, तो आप जानते हैं क्योंकि ट्रेन में डस्ट वगैरह होता था, तो हम लौकिक ड्रेस में आ जाते थे, क्योंकि व्हाइट कपड़ा तो उन दिनों कोयले की ट्रेन में बहुत ही काला हो जाता था। और उसके बाद मधुबन में हम जितना टाइम रहते हैं, कोई भी आता है तो वो अपने बाबा की बताई हुई सिंपल व्हाइट ड्रेस में रहता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी विजिटर आता है और वो कलर ड्रेस पहन के आ जाता है, तो हॉल में बैठता है सभा में, तो उसको लगता है कि हंसों में मैं कौआ बैठा हूँ। वो अपने आप ही जा करके चाहे दुकान से व्हाइट ड्रेस खरीद के अपने उस ड्रेस में आ जाता है। हमें तो ज्ञान ही है, तो हम सारा टाइम वहाँ अपने बाबा के ब्राह्मण ड्रेस में रहे। लेकिन जब लास्ट दिन विदाई का होता है, तो विदाई के दिन हम फिर अपनी लौकिक ड्रेस पहन लेते हैं कि अब जाना है तो सफर में फिर वही ड्रेस काम आएगी। तो इसी प्रकार से मैं अपने पिता की लौकिक ड्रेस पहनकर विदाई लेने बाबा से छुट्टी लेने गया। अब उन दिनों भारत के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स का रिवाज नहीं था, क्योंकि भारत तो देवी देवताओं का देश है, तो यहाँ तो हर व्यक्ति टेलर को कहेगा थोड़ा छोटा कर थोड़ा बड़ा कर, रॉयल भारत के संस्कार है। तो यहाँ रेडीमेड का रिवाज नहीं था कि दुकान से खरीदा और पहन लिया, परंतु हांगकांग में कुछ सिंधी परिवार रहते थे, अब वहाँ रेडीमेड ड्रेस मिलते थे, तो जब भी यज्ञ में आते थे तो कुछ रेडीमेड ड्रेस बाबा के पास छोड़ जाते थे। उन दिनों वो ड्रेस बड़े फैशनेबल और विदेशी गिने जाते थे, तो बाबा उन ड्रेसेस को रख लेते थे कि कोई बच्चा जो नौकरी वगैरह करता होगा उसको दे देंगे, उसके काम आएगा। तो उसी प्रकार से जब मैं विदाई लेने गया तो बाबा ने मुझे कहा, बच्चे ये तुम्हारे लिए है। तो बाबा ने कोई हांगकांग का बू शर्ट वगैरह था वो मुझे दिया। तो जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी कार्रवाई दिखाता है पिता को, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप देखिए ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है मेरे लौकिक पिता है, कितना फिट है आप देखिए। तो बाबा मुस्कुराए और मुझे बोले कि बच्चे लौकिक बाप का पहनेगा तो लौकिक बाप याद आएगा, बाबा का पहनेगा तो बाबा याद आएगा। मेरी समझ में आ गया, मैंने वो ड्रेस ले लिया और अपने मन में धारण कर लिया कि 30 के 30 ड्रेस अगली बार मैं मधुबन ले आऊंगा और सरेंडर कर दूंगा, मैं क्यों रखूं लौकिक ड्रेस। तो अगली बार मैंने एक गठड़ी बनाई, 30 के 30 ड्रेस लाके मधुबन में सरेंडर कर दिए। अब मधुबन में भी कौन पहनता है पेंट कोट वगैरह, तो उन्होंने बांट दिए, कोई जैसे कोई जॉब का कोई काम करना होता है तो सब भाइयों को बांट दिया, जो इस प्रकार के लौकिक में कुछ सेवा करते हैं लौकिक प्रकार की। अच्छा, अगली बारी में मधुबन आया तो मैंने देखा धोबी घाट पे एक भाई जो था वो मेरे पिताजी की पीली बुशर्ट पहन के कपड़े धो रहा था, क्योंकि ऐसे कामों में लौकिक ड्रेस पहनते हैं यहाँ बाबा के बीके। तो मैंने कहा ओ वो मेरे पिताजी की पीली बुशर्ट। उस वक्त मुझे और ख्याल आया कि बाबा ने क्या शिक्षा दी। सचमुच में जब भी वो पिताजी की ड्रेस पहनता था मुझे लौकिक पिता जरूर याद आता था, और बीच बीच में भी लौकिक पिता याद आता था। तो मैं अलौकिक बाप को याद करने वाला, निराकार बाप को याद करने वाला, लौकिक को केवल इसलिए याद कर रहा था कि उसका मैंने ड्रेस पहन लिया, और उसको सरेंडर करने के बाद भी जैसे भूत होता है तो उस ड्रेस का भूत मेरे अंदर रहा, जो एक और भाई ने पहना हुआ है, मैंने सरेंडर भी कर दिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी मेरे मन में ओ मेरे पिताजी की ड्रेस। तो बाबा हमको लौकिकता से सदा मुक्त रखते थे, और उसमें जिसको हम कहते हैं मान शान नाम, अब दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन, उसको ऐसे कर दिया मुझे, तो इस सब से मैं मुक्त हो गया। उसके बाद सचमुच मैंने देखा कि जिस चीज के साथ लौकिक जुड़ा हुआ हो, अर्थात कलयुगी संसार की वस्तु जुड़ी हुई हो, उसको मैंने धारण नहीं करना। आप पिछले मधुबन के सारे फोटोज देख लो, तो मैं कभी भी पर चांस किसी फोटो में खड़ा हूं तो आ जाएगा। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि फोटो हो रहा है तो मैं जरा आगे चला जाऊं। और आज हम कई ब्राह्मणों को देखते हैं, वो दादियों के सेवाधारी होंगे, कोई भी होंगे, तो कोशिश करके फोटो खिंचवाते हैं। वो तो यज्ञ के ब्राह्मण हैं। आजकल तो आप बैठे होंगे तो जो भी पार्टी मिलने आएगी आप उससे बात कर रहे हैं, कुछ ज्ञान की लेन देन कर रहे हैं, पर उनके मन में यही रहता है एक फोटो हो जाए। और बीच बीच में भी वो फोटो खींचते रहते हैं। मधुबन के हॉल में भी जब संगठन होता है, बाबा भी आते हैं तो भी वो फोटो खींचते रहते हैं। अब बताइए ये फोटो देवभार नहीं है तो क्या है? बाबा तो अपना फोटो रखने भी नहीं देते थे अपने टाइम में, हमें अच्छी तरह पता है। बाबा कहते थे ये तो शरीर है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान कहने का एक नुकसान ये है ना, वैसे तो वो सजा सजाया देवता है, ब्रह्मा बाबा का ही रूप है कि वो देह है, और भगवान कह रहे हैं मुझे आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। श्री कृष्ण की देह को याद करने से कुछ नहीं मिलता, तो हम इस लौकिकता में आ जाते हैं। अपने वस्त्रों का ध्यान करना, कोई भी चीज लौकिक होगी तो वो आपको नीचे ले आएगी, क्योंकि हम तो अलौकिक से परलौकिक बनना है। इस प्रकार की जो आई है, मैं है, उसको बाबा ने कहा मैं को मार दो, मैं को परिवर्तित कर दो, तो सारा आपका लौकिक अलौकिक में आप ही परिवर्तन हो जाए। अब बाबा अव्यक्त हो गए तो लोग ये सोचते हैं, पहले पहले हमने भी जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो बाबा का शरीर रखा गया था कि बच्चे दूर दूर से आएंगे और आकर के बाबा के एक बारी देख लें। तो मैं अपने पंजाब में रहता था, अचानक मुझे टेलीग्राम आया प्रकाश मणि जी का, उसमें तीन शब्द थे, पिताश्री एक्सपायर्ड ड्रामा नीचे कुमार का, यानी पिताश्री ने शरीर छोड़ दिया ड्रामा। तो टेलीग्राम आया, मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, पढ़ा तो एक सेकंड के लिए तो मुझे अलौकिक लगा, कह रहे बाबा शरीर छोड़ गए अभी। अच्छा, तो फिर मैंने सोचा फटाफट मैं माउंट आबू पहुंचूं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जिज्ञासु थे, वो वहां नदी थी उसके पार रहते थे, तो मैं मोटरसाइकिल लेकर एक स्टूडेंट के घर गया और उसको कहा कि देखो बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तुम बाकियों को भी बता देना। वो बेचारा तो हक्का पक्का रह गया, लेकिन मैं जल्दी से आके एक टैक्सी किया, चंडीगढ़ तक टैक्सी में आए। और हैरानी की बात थी, मेरा फर्नीचर मैंने कुछ बनवाया था वो एक रेड़े में मेरे सेंटर की तरफ आ रहा था और मैं टैक्सी में जा रहा था। मुझे वो फर्नीचर भी अजीब लगे, रे बाबा ने शरीर छोड़ दिया ये क्या, परंतु मेरी अवस्था पक्की थी। आखिर दिल्ली में आकर हमने फिर दूसरा टैक्सी किया, माउंट आबू पहुंचे तो बाबा की बॉडी पड़ी थी। अच्छा, अब हमने सोचा कि देखो बाबा ने शरीर छोड़ दिया, वहाँ पुराने पुराने सिंधी भाई बहन भी थे, सबके अंदर कुछ ना कुछ हलचल थी, परंतु तो मेरे अंदर नेचुरली कोई हलचल नहीं थी कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, जब बाबा की अस्थियों को अग्नि दी गई जहाँ हम शांति स्तंभ बना है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बाबा कहता था मेरे साथ बच्चे जाएंगे, क्यों ना इसमें मैं जंप कर जाऊं। फिर लेकिन मुझे वो प्रेरणा तो आई लेकिन जंप नहीं किया मैंने। फिर मेरे साथ एक भाई खड़ा था, मैंने कहा भी ऐसा ख्याल आ रहा, कहता तुम संपूर्ण बन गए हो, तुमने अपने संपूर्ण शरीर को धारण कर लिया, तुमने सेवा कर ली है। तो फिर उस ख्याल को मैंने छोड़ दी। लेकिन 21 तारीख को जनवरी को जब बाबा दूसरे शरीर में आए, तो बाबा ने, मुझे याद है, गुलजार दादी के शरीर में आए तो स्टेज पर बाबा अमृत पिलाया करते थे अपने हाथ से बच्चों को। तो बाबा अपने बाएं हाथ को ऐसे रख के दूसरे हाथ से, तो बिल्कुल गुलजार दादी ने उसी पोज में अमृत पिलाया। तो मैंने कहा ये तो बाबा ही है, शरीर बदल देखो, बाबा का पोस्चर भी वही है। उसके बाद से लेकर अव्यक्त बाबा, बल्कि साकार बाबा तो हम उसके सामने जाएंगे, मिलेंगे, कुछ बात करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे तो बाबा रिस्पॉन्ड करेगा। अव्यक्त बाबा तो इतनी बाबा की स्पीड फास्ट है, फरिश्ता है कि हम सबको ऊपर से कंट्रोल करता है। और अव्यक्त बाबा की जो हमको पालना मिली है, उसके बाद जो हमको पढ़ाई मिली है, और अव्यक्त बाबा से नेचुरली वो फरिश्ता रूप में है, तो हमें फरिश्ता बनने के अनुभव हुए हैं, तो सब भाई बहन जानते हैं। तो अव्यक्त बाबा तो कहते हैं बच्चे तुमने बाबा कहा, मैं तुम्हारे साथ आया। अब बाबा कहते हैं बाबा कहा, कई बच्चे बाबा कहते भी हैं पर वो फील नहीं होता उनको कि बाबा ने मेरी मदद की। अब बाबा कहते हैं कि हमें स्मृति दिवस में ये भी सीखना है कि हमें अपने बाबा के साथ संबंध को इमर्ज करना है। मर्ज रूप में तो सबका ही बाबा है, लेकिन वो अनुभूति जब भी आएगी, जैसे किसी चीज को आप प्रयोग में लाते हैं तब आपको उससे लाभ होता है। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ तुम्हारा संबंध जो है, पिछली स्मृतियों को याद कर लो, अनुभवों को याद कर लो, उसको इमर्ज रूप में रखोगे तो आपको बाबा के संग की फीलिंग आएगी। जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो सचमुच में मेरा बाबा है, मेरा बाबा ही है, या कि हम औरों को भी मेरा कहते हैं, तो उसमें फिर हमारे स्नेह बट जाता है, हमारे संबंध बट जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। फिर हम मेरा बाबा कहते हैं तो हमारे खींच और तरफ भी होती है, तो वो काम नहीं करता। तब बाबा कहते हैं, गीत भी गाते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, बाबा हमारा और कौन ही, तुम आप तो हमारे हो ही, हम आपने बच्चे कह दिया तो बाप तो हो ही गए। बाबा कहता वो सब ठीक है, लेकिन उस मेरा बाबा की मर्ज की बजाय मर्ज स्मृति में रहेंगे तब हमको फायदा होगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं मैं सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, सबको एक जैसी पालना दे रहा हूँ, सबको एक जैसा वर्षा दे रहा हूँ, सबको अनेक प्राप्तियां करा रहा हूँ, वरदान भी हर एक को बराबर का देता हूँ, फिर अनुभूति में फर्क क्यों है। तो यही बात हमको देखनी है इस स्मृति दिवस में कि हमें अनुभूति में फर्क ना हो, क्योंकि एक तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने फोकस रखा कि बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है, उसी कार्य की तरफ ही ध्यान रखा। जैसे शिव बाबा कहते हैं मेरे तो बच्चे ही मेरी दुनिया है, ब्रह्मा बाबा ने भी मेरे तो बच्चे ही मेरी दुनिया है। हमें याद है जब पांडव भवन का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो कमरे बन रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा कहा करते थे बहुत स्नेह से, जैसे कमरे बन रहे हैं तो बच्चों को इमर्ज करके, यहाँ मेरे बच्चे आएंगे, माया से थके हुए आएंगे, आराम करेंगे। यानी बाबा इतने स्नेह से, जैसे कि बच्चे उसमें आ ही गए, तो वो जो बाबा का डीप स्नेह है, एक एक बच्चे को जिसने बाबा से पालना ली है, चाहे व्यक्त या अव्यक्त, अव्यक्त पालना का अनुभव सुना हो तो डबल फॉर्नर से सुनो, उनको बिल्कुल साकार जैसा ही लगता है। और जिन्होंने व्यक्त ली है, बाबा हमारे रोम रोम में है, और जो ही हम बाबा का नाम लेते हैं, याद करते हैं, तो आंखों में स्नेह के आंसू आ जाते हैं। तो बाबा कहता ऐसा बाबा जिसने बहुत डीपली, लौकिक बाप तो क्या करेगा, उससे लाख गुना बाबा बच्चों से स्नेह रखता है। अब उस स्नेह को भी हम मर्ज रूप में हमारे अंदर है, लेकिन उसको इमर्ज करें, और खास ऐसे ऐसे मौके पर जैसे ये स्मृति वर्ष मनाया जा रहा है। स्मृति से बाबा कहता है समर्थी आती है, आपके पास बहुत कुछ है लेकिन आपकी स्मृति में नहीं है, तो जैसे आपके पास वो है ही नहीं। तब बाबा कहते हैं मेरे फुट स्टेप को फॉलो करना है तो सुबह से शाम तक, खास तौर पे अमृत वेला बाबा ने रखा हुआ, उस समय से हम में क्या करता था वो फिर बाबा सार रूप में भी बताता है कि बच्चे बाबा दाता है, हमको भी दाता के बच्चे दाता बनना है, और कभी भी सूक्ष्म में रॉयल रूप से भी लेने का संकल्प नहीं करना। इसलिए बाबा ने मांगे से मरना भला का स्लोगन दिया हो, लेकिन लेने की या लेने की इच्छा की अनेक सूक्ष्म विधियां हैं। बाबा कहता है उसका ध्यान रखना, रॉयल रूप से भी नहीं मांगना। दूसरा बाबा कहता है सहयोगी बनना, महासहयोगी, कि हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे ऐसा कर ले कि हमें उससे सहयोग देने की इच्छा ही न उत्पन्न हो, फिर भी हम सहयोगी बना ही है। बाबा कहते हैं कि तुम सहयोगी क्यों बनते हो, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन है, तुमने देवता बनना है। हम जो हमारे से सहयोग नहीं करता, हमारे रास्ते में रुकावट डालता है, हमें परेशान करता है, तो आमतौर पर बाबा के बच्चे कहते हैं कि देखो अन्य से तो हम सबको पूरा सहयोग देंगे, लेकिन इसको सहयोग देने की, इसके लिए शुभ भावना रखने की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं होती, क्या करें। तब बाबा कहता है कि देखो जब तुमने देवता बनना है तो देवता बनने के कारण से सहयोग देना देवता ही गुण है, इसलिए तुम उसको सहयोग दे रहे हो, इसलिए नहीं दे रहे तो आपके साथ क्या करना। इसी प्रकार से आजकल जो बाबा हमको कह रहे हैं, बाबा खास बात यही कह रहे हैं, वेस्ट को आलस्य को खत्म करो। अब आप देखिए कि हमने बनना है देवता, संगम युग है बहुत छोटा, और इस छोटे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा हमारे साथ है। अब बाबा का साथ भी साकार रूप में पूरा हो गया, और अकारी रूप में भी आप देखते हैं अंतिम चरण पर है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, हमारी दादियों की स्थितियां देखें, तो ये अंतिम चरण पर है। अब इस अंतिम चरण के थोड़े से कदम जो हैं, अगर वो भी, कहा जाता है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं होता, अगर वो भी हम उस बाबा के कदम पर कदम रख के, अर्थात जो बाबा करता है वो हम करें, या बाबा जो कहता है वो हम करें, तो भी बाबा कहता है हम अधिकारी बन सकते हैं। पहली बात बाबा कहता है जिसको तुम मेरा कहते हो उस पर तुम्हारा अधिकार होता है। मेरा बाबा तो कहते ही हैं, अगर मेरा रुमाल भी मैं कह दूं और मेरा रुमाल इधर उधर हो जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए, अरे मेरा रुमाल कहाँ गया, मेरा रुमाल, तो और चीजों से मेरी अटेंशन हटके रुमाल ढूंढने में लग जाती। कोई हॉल में सीट पर बैठा हो और बाहर थोड़ी देर के चला जाए तो कोई दूसरा बैठ जाए तो हम कहते अरे तुम मेरी सीट पर बैठ गए, यानी मेरी हालांकि टेम्परेरी है तो मेरा कहने से इतना अधिकार होता। दूसरे भी कहते हाँ भाई ये तो सीट पर ये बैठा था, अब हम मेरा बाबा कह देते हैं तो ऑल माइटी गॉड, उसको हम मेरा कह देते हैं तो हमारा अधिकार तो है। अब बाबा कहते हैं अपने अधिकार को पहचानो, अपने अधिकार को स्मृति में लाओ, अपने अधिकार को यूज करो, क्यों नहीं करते। बाबा कहता है कि दो भुजाओं वालों को अपना साथी बनाते हो कि बाबा आप तो निराकार हैं हम तो साकार हैं, और हजार भुजाओं वाले को, सर्वशक्तिवान को अपना साथी नहीं बनाते। तो नतीजा क्या होता है कि जितनी हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट होना है, उसमें बाधा आ जाती है। माया पार किया है, ऐसे ऐसे करके और भी माया दिल से कष्ट कर देती है। इसलिए अगर हम आज के दिन एक ही बात पकड़ लें, अब वो क्या है, बाबा कहता है वेस्ट को खत्म करो। अब हम कहते हैं वेस्ट का मतलब क्या है, कि जितना बोलना है उतना जरूरी बोलो, उससे ज्यादा ना बोलो, जो देखना है वो देखो, उससे ज्यादा नहीं देखो, क्योंकि सतयुग में वेस्ट नहीं होता इसलिए बेस्ट होता है। वो भी देवता भी देखते हैं लेकिन जितना आवश्यक होता है, देवता भी भोजन करते हैं लेकिन जितना आवश्यक होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त संगम पर अगर हमारे अंदर वेस्ट के संस्कार हैं, तो आप देखेंगे अगर हमारे मन में संकल्प में वेस्ट के संस्कार हैं, तो बाकी जितनी हम बचत भी करेंगे वो वेस्ट का संस्कार बचत को भी वेस्ट के खाते में ले जाएगा। ये बड़ी सोचने की बात है कि हमने बचत की, हमने बोल से बचत की, हमने समय की बचत की, हमने साधनों की बचत की, बहुत बचत की, लेकिन उस बचत का यूज कितना किया। अगर वेस्ट के संस्कार हैं तो वो बचत आलस्य के रूप में वेस्ट हो जाएगी। आजकल कोरोना के दिन हैं, बहुत लोगों की एक्टिविटी घट गई है, तो हमें मौका है, हमें ज्यादा समय मिलता है विश्व की सेवा करने का। लेकिन अगर वेस्ट के संस्कार हैं तो जो कुछ पूंजी हमारे पास है, मान लो कोई बहुत धन कमाए लेकिन उसमें वेस्ट के संस्कार हो, तो पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहता है सबसे बड़ा संकल्प की वेस्ट के ऊपर हमको ध्यान देना, कि संकल्प में अगर वेस्ट का संस्कार है तो फिर वो बोल में कर्म में जो भी हमारी कमाई को तो खा ही जाएगा, और अन्य जितनी हम बचतें भी करेंगे उसको भी खा लेगा। तो हमें वेस्ट को छोड़ना है। आजकल बाबा देखो कहते, कई भाई बहन है वो कहते हैं मेरी ये ड्यूटी है मैंने बहुत अच्छी तरह कर ली, जो जो मेरी ड्यूटी फर्स्ट क्लास करता हूँ उसके बाद टाइम मेरा है। अच्छा, कई बार तो ड्यूटी को भी टाल देते हैं तो दूसरा कर लेगा। अब जो मेरा टाइम है उसमें मैंने किया क्या? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विश्व कल्याणकारी हो, ग्लोब के ऊपर बैठ के बाबा को साथ रख के विश्व को किरणाएं दो, अपनी वृत्ति से वाइब्रेशन दो, वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो सोचते हैं वृत्ति से वाइब्रेशन कैसे दें, क्या वाइब्रेशन दें? तो बाबा ने हमें बताया है कि समाज को मनुष्यों को जिस चीज की आवश्यकता है उसका वाइब्रेशन दो। उदाहरण के तौर पर आज दुनिया में इच्छाएं हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं से परेशान है, और हमको बाबा कहते हैं तुमने वैराग वृत्ति धारण की है, तुम इच्छा मात्र में विद्या की ओर जा रहे हो। और अगर हम ग्लोब पर बैठ के बाबा को साथ रख के अपनी वैराग वृत्ति के वाइब्रेशन देंगे तो लोगों की इच्छाएं घटेंगी, उससे उनको शांति मिलेगी। ऐसे दुनिया में भय है, भय बॉडी कॉन्शियस से होता है, मेरा ये छीन ना जाए। आत्मा कॉन्शियस वालों को तो भय नहीं है, उनको पता है रूप बदल जाएगा, ये बॉडी बदलेगी दूसरी मिल जाएगी। तो हम अपनी निर्भयता के वाइब्रेशन देंगे तो लोगों में भय घटेगा। इस प्रकार से हमें अपना खाली टाइम मनसा सेवा में लगाना चाहिए। ओम शांति।